दिन भर 5 जून बुधवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। विश्व कप में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने। साउथ अफ्रीका ने भारत को दी 228 रनों की चुनौती।
आज होपफुली विराट रोहित एंड द होल टीम कोई कमाल करेगी। आज उनका पहला मैच है।
मैं भी हिंदुस्तान से आया हूं एंड इंशाल्लाह आज इंडिया जरूर जीतेगा। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं वो।
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की फौज ने अपने खर्चों में कटौती की घोषणा की। दुनिया जहान में चर्चा इसराइल की, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गठबंधन नई सरकार बनाने में नाकाम रहा।
अप्रैल 9 के परिणाम सामने आए तो उसके बाद तो यहां कहा जाने लगा कि ये वाकई चुनाव के जादूगर हैं और इन्हें चुनावी रणनीति में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। वर्ल्ड कप 2019 में आज भारत अपना पहला मैच खेल रहा है। इंग्लैंड के साउथैम्पटन में रोज बॉल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और भारत का मुकाबला जारी है, जहां दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 228 रनों की चुनौती रखी है। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 227 रन बनाए हैं। सूडान की सेना ने कहा है कि वो नागरिक प्रशासन का समर्थन करने वाले विपक्ष से बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले विपक्ष से जुड़े डॉक्टरों ने कहा था कि लोगों के प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। सूडान में सैन्य काउंसिल का समर्थन कर रहे सऊदी अरब ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए। इससे पहले सेना ने बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया था। सैन्य काउंसिल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने आज कहा,
نحن في المجلس العسكري نفتح ايادينا لتفاوض لا غيد فيه الا لمصلحه الوطن نكمل من خلاله التاسيس للسلطه الشرعيه।
सैन्य काउंसिल में हम खुले दिल से बिना शर्त के बातचीत का स्वागत करते हैं। ये राष्ट्र के हित में है क्योंकि इसके जरिए ही हम देश की एक सर्वमान्य सत्ता स्थापित कर पाएंगे जो सूडान के सभी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो और उम्मीदों पर खरी उतर सके। ये थे सैन्य काउंसिल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। सीरिया के एक शरणार्थी शिविर ने 2 अमरीकी महिलाओं और 6 बच्चों को कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध होने के शक में उन्हें वापस अमरीका भेज दिया है। अल होल शिविर चला रहे कुर्द अधिकारियों ने कहा है कि अमरीका की गुजारिश के बाद इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद इस शिविर में हजारों की संख्या में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की पत्नियां और बच्चे रह रहे हैं। कई देश इनमें से अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर चुके हैं। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ शहर में आज डी-डे लैंडिंग्स यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नॉर्मेंडी अभियान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। नॉर्मेंडी अभियान के तहत 1944 में नाजियों के कब्जे में मौजूद यूरोप के हिस्सों को छुड़ाने के लिए समंदर के रास्ते हमला किया गया था। इस मौके पर पोर्ट्समाउथ में हुए खास कार्यक्रम में महारानी एलिजाबेथ के साथ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल शामिल हुईं। महारानी एलिजाबेथ ने कहा,
The heroism, courage and sacrifice of those who lost their lives will never be forgotten. It is with humility and pleasure.
अपनी जान गंवाने वालों की वीरता, साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। विनम्रता और खुशी के साथ पूरे देश की ओर से और पूरी दुनिया की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये थे महारानी एलिजाबेथ के शब्द। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने सरकारी टेलीविजन चैनल एबीसी के मुख्यालय पर छापा मारा है, जिसे लेकर वहां तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एबीसी पर खुफिया जानकारी छापने का आरोप है। हालांकि एबीसी का कहना है कि ये छापा 2017 में हुए प्रसारण के संबंध में था, जिसमें अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई सेना की ज्यादतियों के बारे में बताया गया था। एबीसी में खोजी पत्रकारिता के प्रमुख जॉन लिन ने इसे मीडिया पर हमला करार दिया है। इससे एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक और पत्रकार के घर पर छापा मारा था, उन पर भी खुफिया जानकारी छापने का आरोप लगाया गया था। युगांडा के पूर्वी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण आए भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब एक दर्जन लोग अब भी लापता हैं। बारडुडा जिले में बारिश के पानी से लबालब भरी सुमे नदी अपने किनारे तोड़कर बह निकली, जिससे कई गांव बह गए। हजारों की संख्या में लोगों ने गांव छोड़े और वो ऊंची जगहों, चर्चों और मस्जिदों में पनाह लेने का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश ऐसे ही लगातार होती रही तो कई और गांवों पर भी खतरा आ जाएगा। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बॉल स्टेडियम में भारत क्रिकेट विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेल रहा है। आज भारत का सामना है साउथ अफ्रीका से, जिसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 90,000 से ज़्यादा दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा है, जहां भारत के चाहने वाले दूर दूर से मैच देखने पहुंचे हैं।
मैं दुबई से आया हूं और आज होपफुली विराट, रोहित एंड द होल टीम कोई कमाल करेगी। आज उनका पहला मैच है, ऑल द बेस्ट टू देम।
हम सब दिल्ली से आए हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट इंडिया।
मैं भी हिंदुस्तान से आया हूं, एंड इंशाल्लाह आज इंडिया जरूर जीतेगा। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं वो पिछले कुछ मैचेस, तो इंडिया आज पक्का जीतेगा।
नॉर्थवुड से आए हैं मैच देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड है और इंडिया जीतेगा।
हम भी नॉर्थवुड से हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि इंडिया जीतेगा और श्योर इंडिया विल क्वालिफाई एज वेल।
हम भी नॉर्थवुड से हैं और आज का दिन बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत फैन है इधर इंडिया का और लगेगा कि हम इंडिया में है।
साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 228 रन की चुनौती रखी है। साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए हैं, और जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो दर्शक थोड़ा निराश हुए। भारत का एक विकेट शिखर धवन की शक्ल में गिर चुका है। इससे आगे की जानकारी के लिए सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं।
संदीप जी, तीसरे ओवर में पहले तो शिखर धवन का बैट टूटा रबाडा के उससे, और उसके बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप से उनका साथ छूटा, तो 14 रन अभी तक बनाए हैं और एक विकेट के नुकसान पर इंडिया है। लेकिन यहाँ पर स्विंग हो रही है बॉल, तो लग रहा है कि रबाडा जो है वो आज पूरे फुल स्विंग में है अपनी स्विंग के साथ, और यॉर्कर हो, स्विंग हो, इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, बहुत अच्छे से वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है भारत को, और विराट कोहली अभी क्रीज पर है और उनका साथ दे रहे हैं रोहित शर्मा, तो ये दो खिलाड़ी भारत की तरफ से। और क्रिस मॉरिस अभी आ चुके हैं गेंदबाजी करने, और अभी ये मेरे ख्याल से छठा ओवर चल रहा है। जी हाँ, छठा ओवर ये चल रहा है। और अगर हम बात करें पारी की, जो पिछली पारी गई उसके अंदर टॉस जीता था साउथ अफ्रीका ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि लोग जनरली जितनी भी टीमें हैं वो गेंदबाजी पहले कर रही हैं। हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ हारने के बाद उन्होंने फैसला लिया बल्लेबाजी करने का, लेकिन सफल नहीं रहे। 227 रन पूरी की पूरी टीम बनाई, और पहले ही जो दो ओपनर थे हाशिम अमला, क्विंटन डीकॉक, वो सिर्फ 6 रन अमला ने बनाए और 10 रन क्विंटन डीकॉक ने बनाए और पवेलियन चलते बने।
सूर्यांशी, जिस तरह से हाशिम अमला शुरुआत में ही आउट हुए, उसी तरह से शिखर धवन भी उसी तरह आउट हुए हैं, बहुत जल्द, बहुत शुरू में ही।
हाँ, शुरू में ही आउट हो गए। ये बुमराह ने भी ये बात अभी इंटरव्यू जब उनका लिया गया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि शुरुआत में स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है गेंद, तो ऐसे में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पहले 12 या 13 बॉल अगर प्रेशर बना लें तो हो सकता है कि वो हालात भारत के भी हों, लेकिन जिसे कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हो सकता है कि विराट कोहली की और धोनी रोहित दोनों मिलाकर कोई अच्छी पार्टनरशिप दे सकें।
सूर्यांशी पांडे, आप मैच पर नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की फौज ने अपने खर्चों में कटौती की घोषणा की है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने फौज के इस फैसले का स्वागत किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया इस बारे में फर्जी कहानियां गढ़ रहा है। bbchindi.com की खबर सुनिए मानसी दास की जुबानी।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर के अनुसार एक साल के लिए सेना के डिफेंस बजट में कटौती का देश की सुरक्षा पर कोई असर नहीं होगा और हर खतरे का असरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 3 सर्विस इस कटौती से होने वाले प्रभाव को संभालने का काम करेंगी। उन्होंने इसे बलूचिस्तान और ट्राइबल इलाकों की बेहतरी के लिए एक जरूरी कदम बताया है। सेना ने भले ही अब रक्षा बजट में कटौती की बात की है, लेकिन इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि देश के रक्षा बजट में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि दूसरों के मुकाबले पाकिस्तान का रक्षा बजट पहले ही कम है, ऐसे में इसे बढ़ाने की जरूरत है, न कि घटाने की। पाकिस्तान से छपने वाले ट्रिब्यून अखबार ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष का अनुमानित रक्षा बजट 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो कि खत्म होते वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट से 170 अरब रुपए ज्यादा है। इस बजट में पूर्व सैनिकों की पेंशन, रणनीतिक खर्च और स्पेशल सैन्य पैकेज में होने वाले खर्च शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में पाकिस्तान का कुल सैन्य खर्च 11.5 अरब डॉलर था। ये खर्च पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 4% के बराबर है। भारत की बात करें तो साल 2018 में भारत का सैन्य खर्च करीब 67 अरब डॉलर रहा था। इस मामले में 649 अरब डॉलर के साथ अमरीका पहले पायदान पर है। कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल करने में पाकिस्तान सफल रहा था। साल 1980 के बाद पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का ये 13वां बेलआउट पैकेज है। ये कर्ज पाकिस्तान को 3 साल के दौरान मिलेगा। हालांकि इस समझौते पर अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुहर नहीं लगी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पाकिस्तान के सामने जो सबसे जटिल समस्या है वो ये है कि फिलहाल चीन को छोड़कर कोई और विदेशी निवेशक वहां पैसा लगाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी कर्ज का सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान पर है। चीन ने पाकिस्तान को उच्च ब्याज दर पर कर्ज दिया है। इससे आशंका को बल मिलता है कि पाकिस्तान पर आने वाले वक्त में चीनी कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। आईएमएफ के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में महंगाई दर 14% तक पहुंच सकती है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की फौज ने अपने खर्चों में कटौती की घोषणा की है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। रुख करते हैं भारत का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा सीटों के परिसीमन की खबरों की पृष्ठभूमि में कश्मीर के राजनीतिक दलों के कान जाहिर तौर पर स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक गंभीर मसला मानते हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
खबरों के मुताबिक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य में परिसीमन आयोग के गठन के रास्तों को हमवार करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में विद्या गृह मंत्री ने 2 बैठकों का दौर किया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 111 सीटों का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इन खबरों के बाद राज्य की सबसे 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस तरह की किसी भी पहल का विरोध करने की बात की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उनकी पार्टी इस तरह की किसी भी पहल का विरोध करेगी। और वही राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में बताया है, यह परेशान कर देने वाली बात है कि भारत सरकार परिसीमन के जरिए विधानसभा की सीटों का नक्शा बदलने जा रही है। जबरी रूप से परिसीमन की पहल कश्मीरियों पर लगे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नए गांव देने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, जिनमें 24 सीटों को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए खाली छोड़ दिया गया है और 87 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। जम्मू के लिए 37 सीटें हैं, जबकि कश्मीर घाटी के लिए 46 और लद्दाख के लिए 4 सीटें। कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि परिसीमन की बहस छिड़ने की जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस बहस का समय क्या है और अगर ऐसा होता है तो इसका राजनीतिक फायदा किसको मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शाह अब्बास कहते हैं,
पहले ये देखना ये है कि ये डिलिमिटेशन का बहस कब शुरू हुआ। इसका वक्त बड़ा अहम है क्योंकि रियासती जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात कहते हैं कि इसी साल मुनक्कद होने वाले हैं, तो उसी तनाजुर में ये इसको देखना है। अब ये असेंबली इंतखाबात तक हो भी जाए, आप मान लीजिए कि अगर डिलिमिटेशन हो भी गई तो उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, और अगर डिलिमिटेशन नहीं हुई मतलब कुछ कानूनी अड़चने हुई तब भी जम्मू के वोटर को यही बताया जाएगा आज नहीं तो कल इस डिलिमिटेशन को जाना ही जाना है। तो दोनों शर्तों में मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है।
जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में किया गया था। इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। उधर चुनाव आयोग ने बताया है कि 2 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में बीते साल जून में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार टूट गई थी, जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था। हालांकि इस रिपोर्ट को फाइल करने तक कई मीडिया वेबसाइट्स पर सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की खबरों को खारिज किया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
भारत का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन राजस्थान संभवतः वो राज्य है जहाँ हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहाँ कुछ जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आसमान से आग अभी बरसती रहेगी। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
ना दिन में चैन है ना रात को राहत, इस रेगिस्तानी भूभाग में तेज गर्मी के आगे जिंदगी ठहर सी गई है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू, बीकानेर, गंगानगर और कोटा प्रचंड गर्मी में सबसे आगे बने हुए हैं। उत्तरी राजस्थान के चूरू जिले में गर्मी की शिद्दत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में दो बार ऐसा मौका आया जब तापमापी पर पारा 50 डिग्री को पार कर गया। चूरू प्रशासन ने प्रकृति के प्रकोप को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बीबीसी से बातचीत में हालात को बयान किया।
टेम्परेचर अभी लू चल रही है, लू से सीवियर लू जो भीषण गर्मी है वो चल रही है, जारी है और आगे अभी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो गर्मी है जो लू है, भीषण लू है, वो कंटिन्यू रहेंगे। पिछले जो एक वीक में 1 तारीख को चूरू डिस्ट्रिक्ट में 50.8 है जो आज तक का रिकॉर्ड है। ऐसे दूसरे भी श्रीगंगानगर है और वो पूरी बेल्ट जो वेस्ट राजस्थान की है वहाँ पे काफी टेम्परेचर नॉर्मल से 5-6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री आगे चल रहे हैं और ये अपनी कंडीशन ऐसी रहने की उम्मीद है। आदमियों को बहुत केयर करनी चाहिए, घर से जहाँ तक पॉसिबल हो 11 बजे से 6 बजे, 5 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए।
मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य में देह झुलसाने वाली गर्म हवाओं का प्रकोप बना हुआ है। दिन में जब तपिश ज्यादा होती है लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। सड़कों पर या तो कोई मजबूर मिलता है या मजदूर, परिंदे और जानवर भी छाया में पनाह लिए हुए मिलते हैं। तेज गर्मी से दरख्त और पौधे भी प्रभावित हुए हैं। गर्मी की इस मार में पीने के पानी की किल्लत ने भी जिंदगी को कठिन बना दिया है। सरकारी अस्पतालों में एहतियाती उपाय किए गए हैं क्योंकि गर्मी की मार से लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। विकट मरुस्थल वाले चूरू जिले में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मरुबालों के टीलों में बसे जेगनिया गाँव के रूपाराम कड़वासरा कहते हैं गर्मी ने जीना दुश्वार कर रखा है।
हम 3 दिनों से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। हर प्राणी जो 4 पैरों वाला है, जो 2 पैरों वाला है, जीव मात्र अभी इस गर्मी से बहुत ही तकलीफ पा रहे हैं। सभी लोग, बूढ़े लोगों के सांस में तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, किसी को लू लग रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इसको शीघ्र ही अगर बरसात के रूप में कुछ करके परिवर्तित कर दिया जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, हमें जल्दी से राहत दे, हम सबको बड़ी खुशी होगी।
दिन में तो कोई सूरज से आंख नहीं मिला सकता, लेकिन सांझ ढले लोग आसमान को निहारते हैं और बरसात के लिए दुआ करते हैं। पर अभी वो वक्त नहीं आया जब आसमान से बूंदे बरसे। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन नई सरकार बनाने में नाकाम रहा है। अब सितंबर में दोबारा चुनाव होंगे। ये पहला मौका है जब इसराइल में एक साल में 2 बार चुनाव होंगे। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि वो इस बार साफ बहुमत से जीत हासिल करेंगे। वहीं विरोधियों की राय है कि इसराइल में नेतन्याहू का युग खत्म होने को है। इसराइल की राजनीति में जारी उथल पुथल में किसके दावे में है कितना दम, दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
हम एक स्पष्ट चुनाव अभियान चलाएंगे जो हमें जीत दिलाएगा। हम जीतेंगे और जनता जीतेगी।
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के पहले देश के नए सांसदों में से 74 संसद भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा चुके थे। उस दिन तारीख थी 29 मई 2019। करीब 6 हफ्ते पहले नेतन्याहू का अंदाज अलग था। उनके लिक्विड पार्टी ने चुनाव में सिर्फ 35 सीटें जीती थीं, लेकिन अपने गठबंधन के भरोसे वो जीत का दावा कर रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के ऐसे नेता जिनके साथ इसराइल मित्रता का दम भरता है, वो नेतन्याहू को जीत की बधाई दे रहे थे। मीडिया में उनके रिकॉर्ड 5वीं बार इसराइल का प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी। समर्थकों के बीच बीबी नाम से चर्चित नेतन्याहू को जादूगर बताने की भी होड़ थी। इसराइल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि आगे की कहानी नेतन्याहू और उनकी पार्टी की स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं बढ़ी।
अप्रैल 9 के परिणाम सामने आए तो उसके बाद तो यहाँ कहा जाने लगा कि ये वाकई चुनाव के जादूगर हैं और इन्हें चुनावी रणनीति में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पूरी जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनके समूह को 65 सीटें मिली, तो माना जा रहा था कि यकीनन कोई इन्हें परेशानी नहीं होगी सरकार बनाने में। और 65 के 65 ये जो चुनकर लोग आए थे सांसद, इन सभी ने उनके पक्ष में जो है समर्थन का पत्र भी दे दिया। लेकिन किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी कि ये सरकार का गठन नहीं कर पाएंगे।
120 सदस्यीय इसराइल की संसद में कभी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। गठबंधन सरकारें देश की नियति बन चुकी हैं, लेकिन सरकार बनाने का मौका मिलने के बाद कोई नेता गठबंधन तैयार करने में विफल रहा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल पहले यानी साल 2009 में नेतन्याहू जब दूसरी बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने थे, तब वहां भारत के राजदूत नवतेज सिंह सरना थे। उनका आकलन है कि नेतन्याहू का जादू उतार पर है।
उन्होंने सोचा था कि बाकी कोएलिशन पार्टनर्स उनको मिल जाएंगे, तिथि वहां पे मुश्किल हुई उनको, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बजाय ये कि ऑपोजिशन को चांस मिले सरकार बनाने का, वो फिर से इलेक्शन करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा 1948 के बाद, सरकार नहीं बन पाई और दूसरी बार इलेक्शन करना पड़ा। वो तो पक्का लग ही रहा है कि मैजिक तो कम हो गया।
नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसराइल की राजनीति में असल धमक उन्होंने साल 2009 में दोबारा पीएम बनने के बाद दिखाई। कभी कमांडो रहे नेतन्याहू ने अपनी छवि एक ऐसे नेता की गढ़ी जो इसराइल के हितों की रक्षा की गारंटी देता है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा इसराइल दुनिया का इकलौता देश है जहां यहूदी बहुसंख्यक है। फलस्तीनी क्षेत्र और ईरान के साथ इसराइल का तनाव अक्सर दुनिया का ध्यान खींचता है। दूसरे अरब देशों के साथ भी इसके रिश्तों के समीकरण बदलते रहे हैं। बीते एक दशक में नेतन्याहू ने देश की चुनौतियों को अपने दक्षिणपंथी गठबंधन के हक में बखूबी इस्तेमाल किया है। फलस्तीन को लेकर उनका रुख सख्त रहा है, सुरक्षा उनकी आला प्राथमिकता रही है, लेकिन 2019 की चुनावी लड़ाई उनके लिए आसान नहीं थी। नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरे पूर्व जनरल बेनी गेंज ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, उनको सुरक्षा के मुद्दों पर घेरा। नेतन्याहू पर लगते भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी विरोधियों के हमलों को धार दी, और जब वो गठबंधन बनाने में नाकाम रहे तो विश्लेषकों को लगा कि विरोधियों ने नेतन्याहू की कमजोर नसों को पहचान लिया है। नवतेज सिंह सरना को सुनिए।
इनके आगे 3 करप्शन केसेस हैं, और ये भी माना जाता है कि एक बारी वो सरकार में आए तो उनकी ये कोशिश रहती कि वो एक इम्यूनिटी लॉ पास करवा दें अपने कोएलिशन के साथ, ताकि इन पे आगे केस नहीं आगे बढ़ सके।
ऐसी कोशिशों का लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, लेकिन नेतन्याहू की असल दिक्कतें पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लीबरमैन ने बढ़ाई। लीबरमैन एक ऐसे विधेयक के समर्थन की बात कर रहे थे जिसमें रूढ़िवादी युवाओं को सेना में काम करना होता। गठबंधन के बाकी सहयोगी धार्मिक वजहों से इसके विरोध में थे। हरेंद्र मिश्रा की राय है कि लीबरमैन के अड़े रहने का प्रत्यक्ष मकसद चाहे विधेयक रहा हो, लेकिन असल मुद्दा कुछ और था।
इन दोनों का 31 सालों का जो है आपसी निजी संबंध है, साथ काम किया इन्होंने, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अंदर ही अंदर दोनों के बीच गहरे मतभेद हैं, और इसलिए लीबरमैन जो है वो हमेशा मौके के तलाश में थे कि कैसे वो नेतन्याहू को नीचे गिरा दें, और इसी का ये परिणाम है।
इसराइल के राष्ट्रपति रुबेन रिवलिन किसी अन्य नेता को सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए चुनते, उसके पहले ही नेतन्याहू ने दोबारा चुनाव का दांव चल दिया। जुलाई में वो इसराइल के पहले नेता डेविड बेन गुरिया के सबसे ज्यादा वक्त तक शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन सितंबर में होने वाले चुनाव में उनकी राह आसान नहीं होगी। हरेंद्र मिश्रा की राय है कि हालिया सर्वे सितंबर के चुनाव में भी ऐसे ही नतीजे आने के संकेत दे रहे हैं।
कई लोगों का ये मानना है सिर्फ नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए देश जो है वो बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि 500 मिलियन शेकल्स जो हैं उसका खर्च आएगा, जो यहाँ की करेंसी है, और ये बहुत बड़ी रकम है। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। एक तीसरा चुनाव जो है वो ये देश जो है उसके लिए तैयार नहीं होगा।
नेतन्याहू ने सरकार गठन की कोशिश के दौरान विपक्षी खेमे को भी साथ लेने की कोशिश की थी। हरेंद्र मिश्रा के मुताबिक गेंस की पार्टी यूनिटी सरकार के गठन के लिए तैयार होने का संकेत भी दे रही थी, लेकिन उसे नेता के तौर पर नेतन्याहू मंजूर नहीं थे। नेतन्याहू को सरकार गठन के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए था, और लीबरमैन का समर्थन नहीं मिलने से उनके पास सिर्फ एक सांसद की कमी रह गई। लीबरमैन को उम्मीद है कि सितंबर में होने वाले चुनाव में उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन विश्लेषकों का दावा है कि नेतन्याहू आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे।
देखिए, चुनाव के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और माने हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं। ये पूरे जोर से चाहेंगे स्ट्रैटेजी होगी, वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
नवतेज सिंह सरना की तरह ही हरेंद्र मिश्रा भी मानते हैं कि बीते एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसराइल की पहचान के पर्याय बने नेतन्याहू अपनी छवि के सहारे चुनाव लड़ेंगे।
इसराइल की पहचान जो है आजकल उनके नाम से हो रही है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े नेता हैं उनसे उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बार बार जिक्र करते हैं। तो यहाँ जो उन्हें वोट देने वाले जो लोग हैं, उनके जो मतदाता हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नेतन्याहू जो है उनकी वजह से विश्व में इसराइल की साख जो है वो जमी है। इसराइल के सुरक्षा हितों का भी वो रखवाली करने में कामयाब रहे हैं। ये बात जो है वो उनके पक्ष में हमेशा जाती रही है।
इसराइल की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि फिसलते ताज को बचाने के लिए वो चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो देश के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके हाथ में बहुत कुछ होगा कि वो इस बारी ज्यादा से ज्यादा वोट्स ले लें। कई तरह के रीजनल मुद्दे सामने आएंगे। एक यूएस ईरान की रिलेशनशिप है, एक यूएस ने जो पीस प्लान बनाया है पैलेस्टीनियन इसराइल टॉक्स के लिए, उसका रोल आउट होगा कुछ ना कुछ उसके पार्ट का। तो ये कई प्लान, कई चीजें हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेतन्याहू अपनी तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो सितंबर में इलेक्शन होगी ये भी बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन।
इसराइल में बदलाव के हामी और नेतन्याहू के विरोधी भी चाहते हैं कि मुकाबला करीबी रहे। वजह यह है कि वो जानते हैं कि इसराइल का नेता वो शख्स नहीं बनता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, बल्कि कुर्सी पर काबिज वो होता है जो 61 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है। और नेतन्याहू एक बार ऐसा करने में नाकाम रह चुके हैं, और यहीं से विरोधियों को बदलाव की एक राह नजर आती है।
दुनिया जहान पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लौटते हैं क्रिकेट के मैदान में। साउथहैम्पटन में क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने हैं, और यहाँ स्टूडियो में मेरे सामने हैं सूर्यांशी पांडे
और संदीप सोनी जी। यहाँ पर सामने जो स्क्रीन है वो ये बता रही है कि 36 रन अभी तक भारत ने बना लिए हैं, और सेम हाल है रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो शुक्र है कि अभी हैं टिके हुए हैं, क्योंकि इस मौके पर 10 ओवर जब पूरे हो चुके थे तो साउथ अफ्रीका के जो है 2 विकेट जा चुके थे, क्विंटन डीकॉक का, हाशिम अमला, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही विकेट गया है और वो शिखर धवन का है, क्योंकि लेकिन गब्बर का गया है तो ये भारी नुकसान है भारत के लिए। पर आगे अगर हम ब्राइटर साइड देखें तो यहाँ पर एक चीज तो ये अच्छी है कि डेल स्टेन जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, और वही लुंगी निगीडी जो तेज गेंदबाज है, ये दोनों ही नहीं खेल रहे हैं इंजरी के चलते, जिसका फायदा मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को उठाना बहुत जरूरी है। रबाडा पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनको ऊपर के जितने भी ओवर है उसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि नई गेंद के साथ वो खेल सकते हैं। लेकिन मिडिल ओवर में मुझे लगता है कि इमरान ताहिर को जो है जिम्मेदारी ज्यादा दी जाएगी, और अभी अगर आप तो पहलू कुआवो जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और 11वां ओवर चल रहा है और 27 रन भारत ने बना दिए, 37 रन भारत ने बनाए हैं और एक विकेट के नुकसान पर हैं। और यहाँ पर ये बात भी आपको मैं बता दूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जब इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका ने मैच खेला था तो 21 रनों से वो हार गई थी।
सूर्यांशी पांडे से खेल समाचार के बाद चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। सूडान में सेना ने कहा है कि वो नागरिक प्रशासन का समर्थन करने वाले विपक्ष से बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष से जुड़े डॉक्टरों ने कहा था कि लोगों के प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सीरिया के अलहोल शिविर ने 2 अमरीकी महिलाओं और 6 बच्चों को वापस अमरीका भेज दिया है। कुर्द अधिकारियों का कहना है कि अमरीका की गुजारिश के बाद उन्हें वापस भेजा गया है। ब्रिटेन के पोर्टसमाउथ शहर में आज डी डे लैंडिंग्स यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नॉर्मेंडी अभियान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने सरकारी टेलीविजन चैनल ABC के मुख्यालय पर छापा मारा है, जिसे लेकर वहां तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।